कौन सा विशेष डायरेक्शन दिया और इस अव्यक्तवाणी में भी विशेष डायरेक्शन दिया है? क्या व्रत? शुभ संकल्प, नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे, उसको भी नेगेटिव को क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। व्यस्त को भी क्या करेंगे? बेस्ट बनाएंगे। तो जरा भी भय और या घबराहट होगी वो किसको होगी? भय और घबराहट किसको होगी? जो देह अभिमान में रहने वाले होंगे वो नेगेटिव संकल्प करेंगे, उनको फिर भय पैदा हो जाएगा, अपने ही संकल्पों से अपनी सृष्टि रचेंगे। भय व घबराहट जरा भी होगी, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट कहा जाएगा। क्या? क्यों हो गया, क्या हो गया, ऐसी स्थिति अगर किसी की बनती है तो उनको क्या कहा जाएगा? कि उनको इफेक्ट प्रभाव पड़ गया, अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ गए, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है? होने दो खेल। क्या कहा? खेल होने दो, मजे से देखो, घबराना नहीं। अभी तो हंस रहे थे, सन्नाटा छा गया। मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी ना आए। क्या संकल्प में ना आए? ये क्या हो गया, सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, क्या होगा? आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, क्या सेवा दी है? हैं? कि खूब सफाई करो, लक्ष्मी जी आने वाली है। आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है? कौन लोगों ने? त्रिमूर्ति शिव बाप के बच्चों ने, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चों ने सेवा दी है, शालिग्राम बच्चों ने सेवा दी है, माना एडवांस के बच्चों ने सेवा दी है। आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, प्रकृति को सेवा दी है? प्रकृति माना प्रकृष्ट कृति है, कृति माने रचना, प्रकृष्ट माना भरी पूरी, जबरदस्त, पावरफुल, जो रचना है प्रकृति माना कुदरत, परमात्मा की पहली पहली रचना। चैतन्य की बात यहां है या पहले जड़ की बात है? जरूर पहले चैतन्य की बात है, जैसे सूरज चांद सितारे जड़ भी हैं और धरती के सितारे चैतन्य भी हैं। लेकिन बाबा का इशारा पहले किस तरफ है? परिवर्तन कौन करता है, जड़ करता है या परिवर्तन चैतन्य करता है? तो पहले ड्रामा किसका है? चैतन्य का। तो बोला आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो, लंबा लंबा झाड़ू दिया है। झाड़ू क्या किया जाता है? झाड़ू से क्या साफ किया जाता है? कचड़ा जो कचड़पट्टी आत्माएं हैं निगेटिव त्याग ही नहीं सकती, विकृत कर्म त्याग ही नहीं सकती, तो लंबा लंबा झाड़ू दिया है उसको साफ करो। ये डायरेक्शन किसका है और झाड़ू किसने हाथ में दिया है? झाड़ू देने के निमित्त तो कौन बने हैं? एडवांस नॉलेज की पार्टी जो है उसने ही मजबूर कर दिया प्रकृति को हाथ में झाड़ू लेने के लिए। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने ही झाड़ू हाथ में दे दिया। किसको हाथ में? प्रकृति के हाथ में झाड़ू दे दिया, साफ करो। तो घबराते क्यों हो इस बात से है? अरे ये सब साफ हो जाएंगे क्या? आपके आर्डर से वो सफाई करेगी। क्या कहा? ऐसे नहीं करेगी। आपने ही झाड़ू दिया है तो झाड़ू लगाने वाला कब झाड़ू लगाता है? घर में उसको ऑर्डर किया जाता है तो झाड़ू, तो आपके ऑर्डर से ही वह सफाई कराएगी क्या? करेगी नहीं, कराएगी। तो आप क्यों हलचल में आते हो? इसका मतलब आते हो, ये प्रेजेंट टेंस में बोला कि पास्ट में बोला कि फ्यूचर के लिए बोला है? यानी अभी प्रेजेंट में ऐसा वाकया कहीं हुआ है कि प्रकृति ने झाड़ू लगाना शुरू किया भी है, और जब झाड़ू लगा है तो कोई बच्चे हलचल में आए हैं। आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या कहा? प्रकृति का हलचल में आना और प्रकृतिपति अटल हो जाना, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग जो होंगे वो हलचल में आएंगे। क्या कहा? जिनके साधारण पार्ट बनने वाले होंगे वो आत्माएं हलचल में आ जाएंगी, वो घबराएंगे। जो अलौकिक मास्टर सशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। जो विश्व कल्याण के कार्य पहले भी करते थे अब और तीव्र गति से करने लग पड़ेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। किस कार्य में बिजी रहेंगे? विश्व कल्याण के कार्य में। साक्षीपन होगा और कोई भी हलचल हो अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना, क्यों हुआ और क्या हुआ, इसमें बुद्धि को बिजी बा भरा हुआ नहीं रखना, एकदम खाली रखना। जो हुआ ड्रामा कल्याणकारी है और कल्याणकारी हुआ। एक बाप और मैं तो समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, बाप के टीवी व जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। किन बच्चों को? जो शालिग्राम बच्चे हैं उनको क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। क्या कहा? अगर इन साधनों को आधार बनाई लिया तो जो मनसा का पावरफुल आधार बनना चाहिए वो कच्चा बन जाएगा। साधन स्वतः मिल जाए तो यूज भल करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। क्या करें? हमें तो संदेश ही नहीं मिला। साइंस के साधन कभी कभी होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे क्या? इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। कौन सा साधन? साइलेंस का साधन। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें नहीं जाना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, इसका आवाहन कर रहे हैं। गोल्डन एज का आवाहन कर रहे हैं तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, कि कचरा भी वहां रहेगा तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन दृढ़ संकल्प का, सिर्फ संकल्प का नहीं, दृढ़ संकल्प क्या लिया? एक नामी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एक नामी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं, सच्ची दिल पर साहब राजी। बुद्धि क्लियर किनकी रहेगी? जो बाप के साथ सच्चे दिल होंगे, कुछ भी छुपाने वाले नहीं होंगे। सच्ची दिल और साफ दिल। 1399 की शिवरात्रि की वाणी का चौथा पेज। इस समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। सबसे बड़ी विशेष बात क्या बताई? सचखंड की स्थापना के लिए पहली मुख्य बात क्या है? सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। क्या? अपने दिल को भी धोखा देने वाले न महसूस करें, परिवार के भातियों को भी धोखा देने वाले महसूस न करें और बाप से भी सच्चे बनकर के चले। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। क्या? बर्थडे है ना, तो बर्थडे में तो अच्छी अच्छी बातें गिफ्ट में दी जाती है, लेकिन बाप दादा ने क्या कहा? कचड़े की सफाई तो होगी लेकिन बच्चों को क्या करना है? सच्चाई और सफाई से रहना है। तो ये बात आज के दिन नहीं कहनी थी लेकिन कह दी, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचाए रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है और प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन क्या है? कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व शरीरी व आत्माभिमानी बनकर के हलचल से अचल बना सकती हो। या टाइम लगाएंगे, क्या होगा अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। इसको कहा जाता है साधना। इसको चारों तरफ की हलचल है, हलचल का वातावरण है, लेकिन उस समय भी अपने को एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहे तो कर सके। इसको कहा जाता है साधना। किसको साधना? मन को साधना। मन चंचल न होने पाए। मन निश्चल हो जाएगा तो कर्मेंद्रियां स्वतः ही निश्चल हो जाएंगी, सध जाएंगी। तो कहेंगे साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लीन, लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एक नामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड, और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार के सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दादियों से। फॉरेन भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। शिवरात्रि के दिन क्या कहा दादियों से, क्या कहा स्पेशल? फॉरेन भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। अभी बचपन पूरा हुआ। किसका? फॉरेनर्स का बचपन पूरा हुआ, क्योंकि बाद में निकले हैं ना, तो छोटे बच्चे हो गए, तो उनका भी बचपन पूरा हुआ। अभी अच्छे अनुभवी हो गए हैं। पहले जो बचपन होता था ना, वो अभी मेजॉरिटी खत्म हो गया है। भारत में भी वृद्धि अच्छी है। 9 लाख चाहिए वो तो बन रहे हैं ना, माला भी बन रही है तो 9 लाख भी बन रहे हैं। क्या कहा? 9 लाख है प्रजा, और माला में कौन आएंगे? प्रजा वर्ग के आएंगे या राजयोगी आएंगे? माला में तो राजयोगी आएंगे, चाहे वो 8-9 की माला हो, चाहे 108 की फर्स्ट क्लास माला हो, और चाहे 16108 की सेकंड क्लास में। माला भी बन रही है, और माने मालाओं के संगठन भी तैयार हो रहे हैं। माला माना संगठन, और 9 लाख भी बन रहे हैं। दोनों ही बन रहे हैं। लास्ट सो फास्ट भी कोई कोई आ रहे हैं। प्रजा में से निकलकर कोई माला में भी आ जाते हैं। अच्छा है, बाप दादा तो लास्ट नंबर वाले पर भी खुश है, क्योंकि बाप को तो पहचान लिया ना। बाप विशेष बात बच्चों की क्या देखते हैं? दुनिया ने नहीं पहचाना, लेकिन बच्चों ने पहचाना। भले माला का लास्ट नंबर मणका है, चाहे 16,000 की माला है, चाहे 108 की माला है, चाहे नवरत्नों में से है, लास्ट नंबर भी है, तू भी बाप को पहचाना तो। झंडा लहराने के पश्चात बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य, कौन सा झंडा लहराया गया वहां है? कपड़े का झंडा लहराया गया। कपड़े के झंडे का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो भक्ति मार्ग में तीन कपड़ों का झंडा होता है, और ज्ञान मार्ग में दीदी दादियों के द्वारा जो झंडा लहराया जा रहा है वो तीन कपड़ों का तो नहीं होता है, कौन सा होता है? है त्रिमूर्ति सेवका होता है, है? त्रिमूर्ति सेवका नहीं होता है, कौन सा झंडा होता है? शिव ज्योति बिंदु का, शिवलिंग का झंडा। तो लहराने वाले कौन है? यथा राजा तथा प्रजा। तो कौन सा झंडा लहराया गया? एक तो कपड़े का झंडा लहराया गया और दूसरा, हाँ हाँ, जड़ ही झंडा लहराया गया, लेकिन होना चाहिए ज्ञान के आधार पर त्रिमूर्ति का झंडा, तीन मूर्तियों का झंडा, त्रिमूर्ति शिव बाप का झंडा, क्योंकि त्रिमूर्ति शिव बाप की जयंती है। लेकिन लहराया कौन सा गया? ज्योति बिंदु का, कपड़े का झंडा दीदी दादियों के द्वारा लहराया गया, बाप दादा के द्वारा लहराया गया, गुलजार दादी के थ्रू। तो क्या अंतर पड़ा? वहां तो ये झंडा लहराया गया, और जो शालिग्राम बच्चे हैं जहां बर्थडे एक्चुअल मनाया गया वास्तविक, उनों के दिलों ने कौन सा झंडा लहराया? स्थूल लहराया या कोई सूक्ष्म चैतन्य झंडा लहराया? वो कौन सा होता है? तीन मूर्तियों का झंडा, ब्रह्मा की मूर्ति संसार में बुलंद करनी है, जड़ मूर्ति या शरीर छोड़ने वाली मूर्ति नहीं, कौन सी मूर्ति? चैतन्य मूर्ति, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और विष्णु की मूर्ति जिसे वैष्णो देवी भी कहा जाता है, उसे संसार में बुलंद करना है, मूर्ति को, पाठधारी को, और तीसरी शंकर की मूर्ति। तो झंडा लहराने के पश्चात बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य, आज बाप और बच्चों के दोनों के बर्थडे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जैसे अभी सभी खूब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे ही अमर भव। स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी भी आ जाए, लेकिन अमरनाथ के बच्चे कभी मरने वाले, अनिश्चय की मौत में मरने वाले न हो, सदा अमर भव। जैसे ये झंडा लहराया, कौन सा झंडा? कपड़े का झंडा लहराया और पुष्पों की वर्षा हुई, क्या तीन मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगी? तो पहला रिजल्ट क्या होगा? झंडा लहराया जाता है तो क्या होता है? हैं? हाँ, उन तीनों मूर्तियों से जो बंधी हुई फूलों की विशेष आत्माएं फूलों रूपी हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा विश्वास में बंधी हुई है, वो बरसने लग पड़ती है। तो ये झंडा लहराया और पुष्पों की वर्षा हुई, जड़ झंडा लहराया और जड़ पुष्पों की वर्षा हुई, ऐसे ही सदा अपने दिल में बाप की याद का ये झंडा लहराता रहे। कौन सा झंडा है? त्रिमूर्ति शिव का झंडा। जिससे त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई जाती है। नीचे ऊपर नहीं हो, कभी भी याद का झंडा नीचे नहीं हो, ऊंचा हो तो दुनिया वाले अहो भाग्य, अहो बाप, ये पुष्पों की वर्षा दुआओं के साथ आपके ऊपर करेंगे। साथ में एक तरफ याद का झंडा लहराओ, क्या एक तरफ त्रिमूर्ति शिव की याद की झंडा का रोहण करो, आरोहण करो, दूसरी तरफ जो आज बाप का संदेश मिला, कौन सा संदेश? संकल्पों की एक नामी, उस संकल्पों की एक नामी का अवतार बनो। तो ऐसे दृढ़ संकल्प का झंडा अपने दिल में लहराना। क्या कुछ भी हो जाए, एक बाप दूसरा न कोई, और साथ में सेवा के प्रति सदाचारों और सर्वात्माओं के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना, यह है झंडे का महत्व। क्या महत्व है? ऐसे कि नहीं कि सिर्फ तीन मूर्तियों, तीन विशेष आत्माओं को ही संसार के सामने प्रत्यक्ष करना है, लेकिन उन तीन मूर्तियों से कनेक्टेड जो भी सर्व विशेष आत्माएं हैं उन सबको संसार में प्रत्यक्ष करना है। यह है झंडे का महत्व। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तीन मूर्तियां भी संसार में बुलंद हों, उनकी महिमा भी बुलंद हो, और साथ साथ जो भी उनसे कनेक्टेड विशेष आत्माएं हैं वो सब उनकी महिमा बुलंद हो, संसार में प्रत्यक्ष हो जाएं। ये है झंडे का महत्व। एक दिन आएगा, अब वो दिन आया कि आया, जब सब लोग बाप की महिमा करते प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आ जाएंगे। क्या कौन आ जाएंगे? सब लोग, ऐसे नहीं दुनिया के कोई एक धर्म के लोग या एक देश के लोग, सब लोग बाप की महिमा करते प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आ जाएंगे, सहारा लेंगे, और आप सहारा दाता, बाप के बच्चे मास्टर सहारा दाता बनेंगे। तो वो दिन आया कि आया? अच्छा, चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को, क्या छोटे छोटे गांव? बाबा छोटे छोटे गांव किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी गीता पाठशालाएं हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। माने त्रिमूर्ति शिव का ये झंडा बुलंद करने में सबसे आगे बच्चे कौन से होंगे? छोटी छोटी गीता पाठशालाओं के बच्चे, साथ में आप सबको भी है, जो बड़े बड़े सेंटर्स वाले हैं उनको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। अच्छा,
पीछे की कहानी। चल रही थी माया दुर्भाग्यशाली बनाती, नंबर तो है, कोई 100% है, कोई 90% है, कोई 80%, जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। क्या ध्यान रखना चाहिए। हमको रुद्रमाला में नंबर वन पिरोना है। रुद्रमाला में क्यों कहा? विजयमाला में नंबर वन पिरोना है ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब रुद्र है ऊंच से ऊंच पाठधारी, रुद्र से ऊंचा और कोई नहीं। क्योंकि इस यज्ञ का नाम ही क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र के द्वारा ही रचा जाता है। तो रुद्र माला है सर्वोपरि, ये है राजाओं की माला। क्योंकि राजयोग सिखाया जाता है, राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा की और दुनिया में कोई सिखाई नहीं सकता। जिस राजयोग से अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ते हैं, कोई वकालत पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, ऊंचे ऊंचे औहदे पाते हैं, पढ़ाई से ही पाते हैं। लेकिन वो तो है अल्पकाल की पढ़ाई और अल्पकाल के औहदे, एक जन्म के लिए। उनसे एक जन्म की प्राप्ति होती है और ये राजयोग की पढ़ाई है अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाली। परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, वो इस सृष्टि पर आकर के ये राजाई का वर्षा देता है, पढ़ाई से ही देता है। जो जितना पढ़ेंगे उतना राजाई पद पावेंगे। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को कंट्रोलिंग पावर किसने दी? उनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? कोई ने तो सिखाया होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बिना पढ़ाई के तो नहीं बन जाते। तो ये संगम युग है। चार युगों के बाद जब दुनिया बिल्कुल नीचे गिर जाती है, दुनिया से राजाई सफाचट हो जाती है, राजाओं का दुनिया में नाम निशान नहीं रहता, चारों ओर दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन, बेकायदे शासन चलने लग पड़ता है, तब परमपिता परमात्मा आकर के राजाई की स्थापना करते हैं। तो वो राजाई प्राप्त करने वाली जो माला है वो है रुद्र माला। उसके लिए ख्याल रखना चाहिए हमको, रुद्र माला में नंबर वन पिरोने है। जैसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, यहां भी ऐसे ही है। यहां भी बेसिक नॉलेज है, प्राइमरी नॉलेज है ईश्वरीय ज्ञान की, और उस प्राइमरी बेसिक नॉलेज को पास करने वाले फिर एडवांस में जाते हैं, तो क्लास ट्रांसफर होता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं। जिनके जैसे मार्क्स निकलते हैं उसी अनुसार फिर नंबर मिलते हैं, फिर ऐसे ही नंबर वाला ट्रांसफर हो जाए। यहां भी पढ़ करके तुम आत्मा रुद्रमाला में नंबर वाले पिरोएंगी, उनका तो सिलसिला बहुत बड़ा है। फिर वहां से विश्व की विजयमाला में नंबर वार आकर के गद्दी पर बैठेंगे। ये बाप बैठ संभाते हैं,
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो रुद्रमाला और विष्णुमाला को जान सके या उस माला के रहस्य को बता सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी महात्माएं पंडित शास्त्री आदि आए, उन्होंने माला फेरना तो सिखाया लेकिन उसका रहस्य नहीं बताया कि ये माला क्या चीज है। उस माला के आधार पर टाइटल तो धारण किए श्री श्री 1008 श्री श्री 108, लेकिन वो 108 श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी यादगार वो माला बनती है, वो मन के तैयार होते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। वो कब तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, जो सारी दुनिया हर धर्म के लोग माला को सिमरन करते हैं, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोगों में उस माला की मान्यता है। तो जरूर हर धर्म के लोगों का कोई ऐसा टाइम रहा होगा कि हर धर्म के लोगों का डायरेक्ट परमपिता परमात्मा जो कि सब धर्म पिताओं का बाप है, उस बाप के साथ सब धर्मों का कनेक्शन रहा होगा। हर धर्म को राजाई उस परमपिता परमात्मा से मिलती है। तो ये बाप बेट समझाते हैं कि रुद्रमाला क्या है और विजयमाला क्या है। इस माला के रहस्य को और कोई नहीं बता सकता। यह है नंबर वार पास होने वाले विशेष आत्माओं की माला। परमात्मा बाप भी सृष्टि पर आता है तो जगत गुरु बनता है। जैसे वो यूनिवर्सिटीज होती है तो उनमें भी नंबर वार पास होते हैं, फर्स्ट क्लास पास होने वाले होते हैं, पास विद ऑनर होने वाले होते हैं, सेकंड क्लास भी होते हैं और थर्ड क्लास भी होते हैं। तो यहाँ भी मालाएं हैं, 8 की माला है पास विद ऑनर की, 108 की माला है फर्स्ट क्लास की, 16108 की माला है सेकंड क्लास की, और बाकी तो थर्ड क्लास में तो सारी प्रजा आ जाती है। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी कोई विशेष ऐसी शिफ्ट है जो और धर्म वालों की प्रजा में नहीं होती है। तुम वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, डायरेक्ट ब्रह्मा की कुमार और कुमारियां, वो तो ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, लेकिन ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्रह्मा मुखवंशावली कैसे साबित होंगे। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ऐसे बहस चल रही है, मुमनाश्यों की रेस चल रही है, जैसे वो गुजौर होती है तो ऐसे ही आत्मा रूपी अश्व है, मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल ठहर जाते हैं। ऐसे क्यों होता है कि आज बहुत अच्छी दौड़ दौड़ते हैं पुरुषार्थ में और कल ठहरती कला हो जाती है? इसका जवाब, 63 जन्मों में जिसने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो रील यहां संगम युग में घूमती है, अच्छे कर्मों का प्रतिफल होता है, पुरुषार्थ अच्छा होता है। और इन 63 जन्मों में द्वापर कलयुगी जन्मों में अगर दुष्ट कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि पुरुषार्थ धीमा पड़ जाता है, ठहरती कला हो जाती है। इसलिए बोला, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए। 63 जन्मों में जिसने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के हिसाब से ही अवस्था उठती है और गिरती है। फिर इसका कोई उल्टा अर्थ न लगा ले कि जब सब कुछ बनाई हुआ पड़ा है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन पुरुषार्थ के लिए ही ऐसा क्यों सोचते हैं? खाना खाने के लिए क्यों नहीं सोच लेते? खाने के लिए भी सोच लेना चाहिए कि हम पुरुषार्थ क्यों करें खाने का, क्यों खाना बनाए, क्यों रोटी तमाए, ऐसा नहीं सोचेंगे। वास्तविकता ये है कि 63 जन्मों का भी हमें पता नहीं है। जब रील घूमती है तो हम ज्ञान की दृष्टि से जान सकते हैं कि हमारी अवस्था अभी ऊंची उठ रही है तो जरूर हमने अच्छे कर्म किए। हम पुरुषार्थ में तेज दौड़ रहे हैं तो जरूर हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। हम पुरुषार्थ में नीचे जा रहे हैं, पुरुषार्थ डाउन हो रहा है तो जरूर हमने दूसरों को दुख दिए हैं। ये दुख और सुख, ये सब दुख सुख का खेल बना हुआ है। तो बताया, आज कोई बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फार कटी दे देते हैं। आज कहते हैं हमको परमपिता परमात्मा बाप प्रैक्टिकल में मिल गया, कल छोड़ देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मेहनत से धारण करते हैं तो फिर तंग होकर के भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स ले देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब हम चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा, अब हम तो छोड़ देते हैं। नंबर वन है काम महाशत्रु, जो सबको बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग होकर के फारकती दे देता है। तो ये क्रोध और काम ये महाशत्रु हैं, ये बंदर है। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर के गुलगुल बनाने के लिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको भी फारकती दे देते हैं। इनको उनको भी फारकती दे देते हैं। किसके तन से बोला? ब्रह्मा के तन से माउंट आबू में बोला सुप्रीम सोल ने। क्या बोला? जो आकर के भक्तों का भगवान गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं उनको भी फारकती दे देते हैं। तो उनको कह के पढ़ाने वाले को दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ बोल रहा है तो उनको नहीं कहना चाहिए। क्यों कहो ऐसे? क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है वो संसार के सामने बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है। दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो सुप्रीम सोल उस समय ज्ञान बोल रहा था वो सुप्रीम टीचर का पार्ट नहीं बजा रहा था, रिजल्ट देने वाले टीचर का पार्ट नहीं बजा रहा था, एक्सप्लेनेशन देने वाले टीचर का पार्ट नहीं बजा रहा था। सदगुरु या वाइस चांसलर का पार्ट नहीं बजा रहा था। इसलिए बोला कि उनको भारकती दे देते हैं। ये भविष्य के लिए बात बता दी पहले से। बाप अथवा साजन जिसको कभी डाइवोर्स नहीं देना चाहिए उनको भी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनीय डाइवोर्स लेकर के भाग जाती है, फिर बाप क्या करे? ऐसे भागने वाले फिर ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए आया हूं, इसे रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने के लिए आया हूं। अभी तुम रावण की जेल शोक वाटिका में पड़ी हुई हो, उन्होंने तो ऐसे ही नाम दे दिया है अशोक वाटिका। फिर भी श्रीमत परमचल रावण की तरफ चले जाते हैं तो उनके लिए क्या कहें। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, अमरनाथ की पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो कोई लौट आते हैं, सच्चे दिल से तो कोई जाते नहीं है तो लौट आते हैं। अब तुमको ले चलते हैं रोहन यात्रा पर, वो जन्म जन्मांतर करते आए जिस्मानी यात्रा है, और अब बाप कराते हैं तुमको रूहानी यात्रा। उन यात्राओं के करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, जन्म जन्मांतर यात्राएं करते रहे और नीचे उतरते रहे। अब ये एक ही यात्रा ऐसी है जिससे आत्मा अमर लोक में पहुंच जाएगी। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ करके आत्मा परिणाम चली जाएगी, ये रूहानी यात्रा है, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर के पद पाएंगे। हम क्या पद पाएंगे वो चलन के अनुसार है। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार अच्छे अच्छे होते हैं, कोई तो धूमिकारी निकल पड़ते हैं। धूमिकारी मानो धुंध कहते हैं, धुंध को मिट्टी को, धुंधकारी मानो मिट्टी को बनाने वाले। मिट्टी कहते हैं देह अभिमान को, शरीर है मिट्टी, ये देह है मिट्टी, तो देह अभिमान की जो धूल उड़ाते हैं परमात्मा बाप रूहानियत सिखाने के लिए आया है, रूहानियत की पढ़ाई पढ़ा रहा है, देह अभिमान को छुटाए रहा है। और कोई बच्चे ऐसे निकल पड़ते हैं कि और ही देह अभिमान बढ़ाते, दूसरों में भी देह अभिमान की बातें बढ़ाने की करेंगे, दूसरों के बीच में भी ऐसे कर्म करेंगे जिससे देहभान बढ़े और खुद भी देहभान में गिरेंगे। तो सोचना चाहिए हम क्या पढ़ पाएंगे। ऐसे धुंधकारी यहां भी ऐसे होते हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हाथ से उतरते नहीं हैं, ऐसे भी कपूत के कपूत रहते, समझते नहीं है इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भी भूल जाते, जैसे गर्म जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे हमको बाहर निकालो, फिर बाहर निकलने से जैसे कि तैसे बन जाती है। यहां भी बच्चे ऐसे, यहां भी संगम युग में गर्भ जेल हो जाती है, ज्ञान में चलते चलते ऐसे बहुत हैं जो घुटते रहते हैं, न बाहर निकल सकते हैं न अंदर रह सकते हैं। बिल्कुल बुद्धि में बात ठहरती नहीं है। नंबरवार हैं उनका पता लग जाता है ये गादली बुलबुल है अथवा नहीं है, हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर ही रहते हैं वही दिल पर चढ़ेंगे, ऊंच पद पाएंगे। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है तो इसको क्या रखना है, वो साधु सन्यासी तो ऐसे ही भस्म रमा लेते हैं, वास्तव में भस्म रमाने की बात नहीं है, वो तो स्थूल बात हो गई। वास्तविकता यह है कि देहभान को भस्म करना है, ये पुरुषार्थ है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा करने की दरकार नहीं है। तो शरीर को स्वाहा करना है ईश्वरीय सेवा में। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि दिन रात सर्विस में लगे रहो, बाप तो कहते हैं अपने गृहस्थ में रहो, 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो, रूहानी सेवा करो, 8 घंटे जिस्म के पोषण के लिए जिस्मानी सेवा करो, और 8 घंटा जो बचता है उसमें आराम करो। हिसाब बता देते हैं, भले 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, 8 घंटे बाप को याद करो, कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, ये निराकारी आत्मा है, उनकी बच्ची है, कौन से चित्र पर समझाना है? ये बात कौन से चित्र पर समझानी है कि ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं? ये मूर्ति के चित्र पर है, जिसमें भक्ति मार्ग में भी लोग कहते रहे हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ऊपर जो ज्योतिबिंदु शिवलिंग रखा हुआ है, नीचे तीन मूर्तियां बनी हुई हैं, वो तीन मूर्तियां भी गुरु बनती तो है लेकिन सदगुरु नहीं है, वो आत्माएं हैं, वो भी नीचे ऊपर होती हैं, वो मनुष्य से देवताएं बनने वाले हैं लेकिन परमात्मा नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा जिसको कहा जाता है, परे ते परे, जो प्रजापिता का भी बाप है वो परम पिता परमात्मा शिव है, वो ही हमारा वंदनीय है। तो ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, उसको बाबा क्यों कहा? मुरली में तो बोला हुआ है बाबा कहा जाता है साकार और निराकार की बेल को। ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ है त्रिमूर्ति के चित्र में, उसको बाबा क्यों कह दिया? वो तो निराकार की यादगार है, यादगार तो है लेकिन उस निराकार की यादगार में जो लिंग है वो साकार का प्रतिरूप है, भले वो निराकार स्टेज में टिकने वाला है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां नहीं दिखाई गई है। वो ये बात साबित करता है चित्र कि इन इंद्रियों की जैसे उनको स्मृति ही नहीं है, शरीर में से इंद्रियां अलग कर दी है, तो जो भर बचता है वो एक लिंगाकार बच जाता है। तो लिंग शरीर की यादगार, उस साकार शरीर की यादगार जो निराकार स्टेज में टिकता है, और उस निराकार स्टेज में टिकने वाले शरीर के अंदर, उस मुकर्रर रथ के अंदर, वो ज्योति बिंदु शिव की आत्मा जो बिंदु के रूप में या सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में रखी गई थी, वो है शिव की यादगार, सुप्रीम सोल की यादगार। इसलिए जो त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है वो टोटल निराकारी है, टोटल बिंदु है, ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टोटल बिंदु कुछ कर ही नहीं सकता। बिंदु अगर शरीर धारण न करे तो मुरली में बोला है वो जड़मत हो जाता है, जड़मत उसकी ज्ञान के आधार पर कोई नहीं ली रहती। तो बोला ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। कौन सी निराकारी आत्माएं? कौन से चित्र में? त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये उसके निराकारी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम तुमने कभी सुना है? ऐसे समझाओ, बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा बैठे नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। कौन कौन स्थापन करते हैं? ब्रह्मा या प्रजापिता स्थापन करने वाला नहीं है, कौन है? परमपिता परमात्मा, वो भी परमपिता परमात्मा सिर्फ बिंदु रूप में नहीं, इसलिए लिखा परमपिता परमात्मा बैठ, बिंदु के लिए नहीं बोला कि बिंदु जो है वो नई सृष्टि स्थापन कर देता है, बिंदु के लिए बैठ खड़ा या सोया ये नहीं कहा जा सकता। तो वो ज्योति बिंदु शिव साकार शरीर में बैठ करके नई दुनिया स्थापन करते हैं, नई सृष्टि बनाते हैं, पुरानी को नहीं बनाती। जिसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन समझते हैं कि शोभावा नहीं सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। अरे शोभावा नहीं सृष्टि स्थापन करते हैं तो उनका कोई साकार रूप भी चाहिए ना, ऐसे कैसे स्थापन कर देंगे। कहते हैं कि वो आकर के ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाए जाते हैं, ज्ञान को हम धारण करते हैं, उनसे योग लगाते हैं तो हम ही नई सृष्टि स्थापन करते हैं। तो जब सब कुछ हम ही करने वाले हैं, हम ब्राह्मण बच्चे ही सब कुछ कर लेते हैं, तो गायन और पूजन सबसे जाते हमारा ही होना चाहिए। फिर परमात्मा के गायन पूजन क्यों संसार में होता है? सारी सृष्टि में हर धर्म के लोग परमात्मा को उतना क्यों मानते हैं? जरूर परमात्मा ने प्रैक्टिकल में आकर के इस सृष्टि पर सारा कार्य हम बच्चों के द्वारा संपन्न कराया है, तो पुरानी सृष्टि को परमात्मा ही आकर के नहीं बनाते, उस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। क्या कहा? इससे नहीं, जिस ब्रह्मा के तन में बाजू में बैठा हुआ सुप्रीम सोल बोल रहा है उसके लिए बताया कि इससे नहीं, किससे? उस ग्रैंड फादर से। दादा लिख रहा है कि ब्रह्मा का तन वो कोई ग्रैंड फादर का रूप नहीं है, एडम या आदम का रूप नहीं है। इसलिए एक मुरली में स्पष्ट कह दिया है ना, ब्रह्मा सरस्वती को, मम्मा बाबा को एडम आदम आदम और यू नहीं कहेंगे। उस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, उस ग्रैंड फादर से। मैंने मुरली चलाते समय ये इशारा कर दिया कि आगे आने वाला जो समय है उस समय में जो परमात्मा पाठ खुलेगा जिस तन के द्वारा, वो तन ही ग्रैंड फादर का रूप होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वो तो धर्म पिताएं हैं, सिर्फ धर्म पिताएं, उनको ग्रेट ग्रेट नहीं कहेंगे। उन धर्म पिताओं में भी जिनकी मान्यता है, वो धर्म पिताएं भी जिसको अपना सुपर मानते हैं, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जो संगम में ही आता है, सब धर्म पिताओं के सामने प्रत्यक्ष होता है। उस समय सारे ही धर्म पिताएं सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करके, उसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? नई दुनिया की स्वर्ग की प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं सिर्फ मुझू को याद करो, ये प्रॉपर्टी लेने के लिए शर्त क्या है? शर्त ऐसी है कि जिस पर बहुत ध्यान देना है। शर्त है सिर्फ मुझू को याद करो, अगर दूसरों को भी साथ साथ में याद करते रहे, वो बेचारी याद करते रहे, तो एक तरफ पाप भस्म होंगे और दूसरी तरफ पाप चढ़ते जाएंगे। जो तीव्रता से कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, पुरुषार्थ में तीखे नहीं जोड़ सकेंगे। इसलिए बोला सिर्फ मुझे को याद करो और किसी को याद नहीं करो। लेकिन इसका भी अर्थ उल्टा लगा लेते हैं, कहते हैं सिर्फ मुझे को याद करो माने बिंदी को याद करो। अरे बिंदी आत्मा सिर्फ एक ही है या अनेक हैं? बिंदी बिंदु आत्माएं ये अनेक हैं या एक हैं? एक तो नहीं है, 500-600 करोड़ तो मनुष्यों की ही आत्माएं हैं, फिर कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी भी आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो कौन से बिंदु को याद करें? कैसे पता चलेगा कि हमने किस बिंदु को? शरीर होगा तो अनुभव होगा, शरीर नहीं होगा तो अनुभव भी नहीं हो सकता। तो आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा। आत्मा पहले पवित्र बने, बेसिकली पवित्र बनती है तो ज्ञान और योग की गहराई को समझ सकती है। बेसिकली पवित्रता के लिए पहली पढ़ाई, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हुए उस ज्योति बिंदु बाप को याद करो, तो तुमको बेसिकली जो कट उचड़ी हुई है आत्मा के ऊपर वो उतर जाएगी। बिंदु को याद करते करते बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, चैतन्य को याद करते करते बुद्धि कैसी हो जाएगी, दया बुद्धि से कैसी हो जाएगी, चैतन्य बुद्धि हो जाएगी। और आंखों में से जो रोशनी निकलती है, कोई की आंखों में से तीखी रोशनी निकलती है और कोई की आंखों को उजाली नहीं होती है, दिल रोशनी निकलती है। कारण क्या है, ये आंखों में से किसकी रोशनी निकलती है, आत्मा की रोशनी निकलती है। जब तक इस शरीर में आत्मा है आंखों में से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो रोशनी भी आंखें बटन हो जाती है। तो वो आत्मा में जो रोशनी है वो रोशनी भी उस परमपिता परमात्मा की याद से बनती है। देह और देहधारियों के चिंतन करने से रोशनी घटती है। तेसर जन्म देह के संबंध में आते रहे, देहधारियों के संबंध संसर्ग में आते आते आत्मा की रोशनी कम हो गई, तो आत्मा जो